गीता जी के ना कर्म के रहस्य की बातें जो बतलाई हैं ऐसी कहीं नहीं। गीता की दूसरी अध्याय के वहां कर्म का रहस्य बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु मा ते समस्त कर्मणि। अर्जुन तेरा कर्म के वहां अधिकार है, फल में नहीं। अर्थात कर्म करने में तुम स्वतंत्र है, किंतु उसका जो फल है वो तुम्हारे हाथ की बात नहीं। जैसे कोई भाई गल्ला किराना बाजार में खरीद करे या बिक्री करे, ये तो अपने हाथ की बात, किंतु उसमें नफा होगा या नुकसान होगा ये हाथ की बात नहीं। तो शास्त्रविद कर्म को ही कर्म कहते हैं। शास्त्रविद मनुष्य कर्म तो कर सकता है कि उसका फल जो है तो भगवान के हाथ। फिर कहते हैं कि कर्म के फल का हेतु भी तू मत बन, अर्थात कर्मों के मां जो मेरापन है ये मेरा कर्म, और कर्मों के मां जो आसक्ति है और फल की इच्छा के सिवा जो आसक्ति है वासना है ममता है कृतापने का अभिमान है, ये सब कर्म के फल के हेतु हैं। तो तू कर्मों के वहां आसक्ति भी मत कर और ममता भी मत कर, और उनकी जो सूक्ष्म वासना वो भी नहीं करनी चाहिए। तो फिर कर्म करने की क्या आवश्यकता है? तो नहीं, माते ये माने मावन नहीं, कर्म के न करने अकर्मी, कर्म के न करने के मां भी तुम्हारी आसक्ति न हुए। कर्मण्येवाधि कारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेषु मा ते समस्त कर्मणि। सम्मान आसक्ति कर्मों के न करने में तुम्हारी प्रीति भी मत। चार चरणों में चार बात कही। मनुष्य को शास्त्र जिस कर्म तो करने चाहिए, उन्होंने फल की इच्छा नहीं करनी और उनमें ममता भी नहीं करनी चाहिए और आसक्ति भी नहीं करनी चाहिए, और कर्म के न करने के वहां भी प्रीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि कर्म करने के वहां अधिकार है। योगस्थ कुर्माणी संयम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समूहत्वा समतम योग उच्यते। सिद्ध सिद्ध समूहत्वा समतम योग उच्यते। शिव जी और अस्सी जी ने समान भाव होकर कर्म कर, क्योंकि समता का नाम ही योग है। योगों कर्मों के मां जो समत्व भाव है उसी का नाम योग है। अतः योगस्थ कुर्माणि योग में स्थित होकर कर्मों को तुम कर। ये धनंजय आसक्ति से रहित होकर के तो कर्मों का आचरण कर। दूरे न जगर दूरे न जगन कर्मे बुद्धि योगा धनंजय बुद्ध उत्सल मंदिर चेक कर बना फल हेतु। दूरण मान बहुत ही खराब है, माने समत्व बुद्धि के बिना कर्मों का करना, माने समभाव से करना उत्तम है। सहकाम भाव से करना जो है, सहकाम कर्म बहुत नीचे दर्जे की चीज है। अच्छा बुद्धि योग की मान समत्व भाव की शरण ले, कृपणा फल हेतु है। फल की इच्छा से जो कर्म करते हैं वे कृपणा है, दीन है, मांगते हैं। तो इसमें ये रस बताया और इसका फल बताया, प्रजाति यदा का फल बताया उनका। न्याय विक्रमणा सोचती प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्प मश्च धर्म से त्राते मैं तो भया। कहते हैं कर्म निष्काम भाव से कर्मों का जब आरंभ कर दिया तो उसका नाश नहीं होता, वो उसका उद्धार करके छोड़ता है। उसमें कभी उल्टा पाप नहीं होता, जैसे सैकान कर्म करने में गलती हो जा रहा है तो हानिकर हो जाता है। और ऐसी बात भी नहीं है कर्मों की माँ, कोई न करे तो उसको पाप लगे। कर्तव्य कर्म तो न करने से पाप लगता है, और निष्काम कर्म के न करने से पाप नहीं लगता, बल्कि उसकी आत्मा का उद्धार हो जाता करने से, और न करने से कोई पाप नहीं लगता। निष्काम भाव से थोड़ा भी आचरण किया जावे, भाव एकदम निष्काम होना चाहिए, संसार से उद्धार कर देता है, महान भय से चार देता है। इसी प्रकार से थी कर्मों का है गीता के ना दूसरी ध्यान में बतलाया, ऐसे चौथी ध्यान में बतलाया। चौथे अध्याय के वहां भगवान कहते हैं, नम कर्माणि लिम्बन्ति नैमे कर्म फलेष्प्रिया इति मां नियो हि जानाति कर्म भीर न सबद्धते। नम कर्माणि लिम्बन्ति, मुझको कर्म लिपायमान नहीं कर सकते। नैमे कर्म फलेष्प्रिया, क्योंकि कर्म के फल की इच्छा मुझको नहीं है। इति मांग यो भी जाना थी, इस प्रकार मेरा जो रहस्य को जान जाता है, मुझको जो रहस्य से जान जाता है, वह पुरुष भी कर्मों के द्वारा नहीं बंधता। मुझको कर्म क्यों नहीं मांगते हैं कि कर्म के फल की मुझको इच्छा नहीं। एवं जात्वा कृतं कर्म पूर्व रपिम मोक्षु भी कुरु कर्मे तस्मा तुम पूर्वी पूर्व तरण कृतम। ये भगवान ने गीता की चौथी अध्याय के 15 के श्लोक को बताया। एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार इसके रहस्य को जानकर, पूर्व के मोक्ष इच्छा वाले पुरुषों ने कर्म किए, पूर्व के मोक्षों ने जिस उद्देश्य से कर्म किए उसी प्रकार से तुम भी ऐसा कर। कर्म नोपी भोजन भोजन तेजी करना है, अकर्म से भोजन गहना करना। कर्म क्या चीज है इस बात को समझना चाहिए, और अकर्म जो क्या है उसको भी समझना चाहिए, और विकर्म क्या है इसको भी समझना चाहिए। कर्म की गति बहुत गहन है, सूक्ष्म है, रहस्य है, छिपी हुई है। शास्त्र विद क्रिया का नाम कर्म है, और शास्त्री द्रुव जो कर्म है उसका नाम विकर्म है, विपरीत कर्म का नाम विकर्म, और कर्म के अभाव का नाम अकर्म। कर्म की गति बहुत तेज गहन है। किम कर्म किम करने की कभी अत्यत्र मोहिता तत्व कर्म पर बक्षामी ज्ञातवा मोक्ष से सुभाष। कर्म क्या है और अकर्म क्या है इस विषय में जो पंडित है, ज्ञानी है, वे भी मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं, विवेकी भी। वे कर्म मैं तेरे प्रति कहता हूँ, जिसको जान करके समझ करके तू मुक्त हो जाएगा। यूं कहकर के कर्म का विशेष रहस्य भगवान बतलाते हैं। कर्म न कर्म या पश्चे ज कर्म नहीं कर्म या सम्भुन बुद्धिमान मनुष्य सूचा युक्त है किसने कर्म कृत। भगवान कहते हैं कि कर्म के बीच में अकर्म को देखना चाहिए, और अकर्म के बीच में कर्म को देखना चाहिए। माने जो आदमी कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों के बीच में बुद्धिमान है, पर वास्तव में कर्म के करने वाला और योग युक्त है। तो कर्म के में अकर्म क्या और अकर्म के मन कर्म क्या, जैसे महात्मा पुरुष है जनकादि जैसे राज करते थे, तो इस तरह से यज्ञ दान तप सेवा जिसने जो उत्तम शास्त्रविद क्रिया है, शास्त्रविद जो कर्म है उनको करता है, देखने के बीच में वे कर्म है, वो जप करता है, दान देता है, राज करता है, भोजन करता है, शास्त्र जीत कोई भी क्रिया किंतु उसके बीच में न तो उसकी प्रीति है, न आसक्ति, न कोई उसमें फल की इच्छा है, न ममता है, ये दोषों से रहित है। तो वस्तु के बीच में उनका करना न करने के समान ही है। ये आगे बतलाते हैं कि त्यक्त्वा कर्म फलाशंगम नित त्रिपतो निराश्रिय कर्मण्य प्रवृत्ति नैव किंचित करोति स। त्यक्त्वा कर्म फलाशंगम, शास्त्र विद कर्मों का आचरण तो करता है, क्या करके? कर्म के बीच में फल और आसक्ति का त्याग करके। त्यक्त्वा कर्म फलाशंगम अद्वित त्रिपतो, और नित्य जो है उस परमात्मा के ध्यान में मस्त सतत है और संसार के आश्रय से रहित है, ऐसा पुरुष कर्म करके भी कुछ नहीं करता, ये उसका रहस्य। देखने में तो करता है और वास्तव में नहीं करता। कर्म करता है उसमें कर्तापन का अभिमान नहीं है, तो वह कर्म भी तो अकर्म है। इससे मान कृत्य भाव बुद्धि होते अथवा मान लोका न हंतिम अनुबद्धते, जिसमें मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि एक प्रकार से स्वार्थ करके लिपावमान नहीं होती है, निष्काम भाव से ही करता है, ऐसा पुरुष जो तीनों लोगों को मार करके भी वास्तव में नहीं मारता और न पार से बंधता है। इसलिए अर्जुन तुम इस प्रकार के भाव से जुझ कर फिर तुम अपने पाप को निपट होगा। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जागो तथो युद्धा नहीं पाप मुआवसी। भगवान ने गीता की दूसरी जाति 38 के श्लोक में बताया है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको समान करके और अपने कर्तव्य बुद्धि से युद्ध होकर फिर तो पाप को नहीं प्राप्त होगा। तो कर्मों के मां यह रहस्य है कि देखने के मां कर्म करता है किंतु उसमें न आसक्ति है, न करता अपने को अभिमान है, न ममता है, न प्रतीक्षा है, लोकोपकार के वास्ते उनकी सारी क्रिया होती है। देखने में वो करता था प्रतीत होता है किंतु बात को मैं वो करता हुआ भी कुछ नहीं करता। तो ये कर्मों के बीच में अकर्म देखना कर्मों का रहस्य है। अकर्म ही च कर्म है, एक आदमी कर्म बिल्कुल नहीं करता, बाहर की सब क्रिया छोड़ दी और मन के भीतर के संकल्प का भी त्याग कर दिया, बाहर से कर्मों का त्याग कर दिया, बिल्कुल एकांत में ध्यान के में बैठा है, कोई भी कुछ क्रिया नहीं करता, किंतु मन के बीच में उसके ये अभिमान है कि मैंने सब कर्मों का त्याग कर दिया। तो ऊपर से तो सब त्याग कर दिया और भीतर के बीच के मां अपने को त्यागी मानता हुआ बैठा है, त्याग रूप क्रिया का अभिमान कर रहा है कि मैं त्यागी हूँ, तो वो मैं करता हुआ भी करता है। तो देखने में तो कर्मों का त्याग कर दिया क्योंकि भीतर में त्याग नहीं है, तो वो त्यागी नहीं है वास्तव, वो न करता हुआ भी करता है। एक आदमी करता हुआ भी नहीं करता, जब कर्मों के अपना स्वार्थ नहीं है, आसक्ति नहीं है, ममता नहीं है, करने पड़ने का अभिमान नहीं है, अंतकरण एकदम शुद्ध है और वो कर्म करता है। वास्तव में दूसरे द्वारा कर्म होते हैं वो करता नहीं है, पर मान लो जी करे तो भी कोई अपना वो वास्तव उसकी क्रिया नहीं है कि तत्वा कर्म फलाशंगम नित्य तो निराश्रय। कर्म के फल और आसक्ति को त्याग करके और अनाश्रित भाव से कहे तो वो करता भी नहीं करता। ताकि छठी जाके पहले श्लोक में बताया है, अनाश्रित कर्म फलन कार्य कर्म करोती है सन्यासी से योगी से न निर्गुण न चाप करिए। भगवान गीता की छठी जाके पहले श्लोक में कहते हैं कर्मों के फल के आश्रय से ही, माने कर्मों का जो फल है वो नहीं चाहता उससे एकदम उससे उसको आसर नहीं उस आसर से रहित। अब जो करते हैं शास्त्र जी से जो कर्म है परोपकार जो कर्म है लोगों का हित ऐसा कर्म है वो बाहर से करता है तो वही योगी है और वह सन्यासी। किंतु कोई ऊपर से सब कर्मों का त्याग कर दिया यहां तक कि अग्नि को भी नहीं छूता तो वास्तु के बीच में वह न योगी है और न सन्यासी। ऊपर का तो त्याग कर दिया उस त्याग करने वाला योगी सन्यासी नहीं है किंतु कर्म करता हुआ भी योगी सन्यासी है। ये एक प्रकार से कर्म का रहस्य और भी बहुत है। जिसने सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्म समर्पणितम बुरा जिसने सर्वे समारंभा जिसकी सारी चेष्टा कि उस संसार के हित के लिए हो रही है उसके बाद अपना कोई स्वार्थ नहीं है कामना आसक्ति और संकल्प से रहित है। ज्ञानाग्नि के द्वारा जिनके सारे कर्म पाप दग्ध हो गए ऐसा जो आपने महापुरुष है उसको ज्ञानी महात्मा लोग भी जीवन मुक्त महात्मा मानते हैं उसको बहुत उच्च कोटि का मानते हैं। जैसे राजा जनक को राज करते हुए बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके पास जाकर उपदेश लेते थे और उसको ज्ञानियों का सरदार समझते थे। वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को भी राजा जनक के पास उपदेश लेने के लिए भेजा। इसी प्रकार से थी अपने कर्म का रहस्य गीता के मां भरा हुआ है। अब एक सबको ये बात समझ में आने के लिए एक आपको कथा बताई जाती है। कथा कहां की है? पद्म पुराण के सृष्टि खंड की। पद्म पुराण सृष्टि खंड। एक समय की बात है वेदव्यास जी के पास उनके शिष्य आए और कहा महाराज हमको आप उपदेश करिए। तो वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कहा कि मैं एक तुम लोगों को महायज्ञ बताऊंगा जिसके एक एक के पावन से मनुष्य का कल्याण हो जाए। तो उन्होंने ऐसा उपदेश दिया। वेदव्यास जी कहते हैं कि एक नरोत्तम नाम का ब्राह्मण था उसके माता पिता बूढ़े थे और अंधे थे। ऐसे माता पिता का त्याग कर करके वह मन के मन तपस्या करने के लिए चला गया और जाकर के बड़ी भारी तपस्या की। उस तपस्या के प्रभाव से उसकी धोती आकाश में सुखा कर और स्नान करके उस धोती को ऊपर फेंक दिया करता वो फैल करके अपने शुक्र सिमट करके उसके पास आ जाता। एक दिन की बात है वो अपने भजन त्यान कर रहा था स्वाभाविक उसकी दृष्टि एक बार ऊपर को गई और आकाश के वह कोई चिड़िया उड़ रही थी उसने बीच कर दी स्वाभाविक ऐसी टुकती गई संजोग बस वो उसके मुख में आकर गिरी। तो उस नरोत्तम ब्राह्मण को क्रोध आ गया कि देखो एक प्रकार से हमारे मुख में से बैठ करती कोई चिड़िया ने कोई जानकर नहीं की। उसकी तरफ वो बगली चिड़िया थी उसकी तरफ देखा देख रहे थे वो भस्म होकर नीचे गिर पड़ी। तो एक जो उसकी वस्तु देकर मन के वहां दया आई कि ये काम ठीक नहीं हुआ, किंतु साथ साथ के वहां अभिमान आया कि मेरा इतना भारी प्रभाव हो गया है, इतना मेरा तप हो गया है कि मैं जिसको क्रोध से देख हुआ भस्म हो जाता, मैं क्या जिसको भस्म कर दूंगा। तब देववाणी हुई आकाशवाणी, आकाशवाणी ने कहा कि नरोत्तम ब्राह्मण उनको ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए, इस क्रोध के कारण तुम्हारा जो तप है वो सब भस्म हो गया। अब आकाश में तुम्हारी ध्योति सूखा करती वो नहीं सूखेगी। अरे मूक चंडाल जिस प्रकार की तपस्या करता है उसके मुकाबले में तुम्हारी तपस्या कुछ भी नहीं है। उसके कानून में आ गई मूक चंडाल तपस्या करता है, उसकी खोज करने लगा कि मूक चंडाल का मकान कौन सा है। तो लोगों ने बतला दिया वो है, उस मकान के ऊपर गए तो वहां क्या देखता है कि उसका बड़ा भारी मकान जो है आकाश में झूल रहा है, नीचे उसको कोई बुनियाद नहीं है, कोई खंभे नहीं है। उसे मूक चंडाल के तप के प्रभाव से वो आकाश में झूलता है। ये देखकर उसको बहुत आश्चर्य हुआ, सोचा कि तेरी तो धोती पार भरती थी और ये लाखों में का बकार, ये तो बड़ा भाई कोई अवश्य है। देखा वो क्या करता है कि वो अपने माता पिता की सेवा करता है। दिखलाना यह है कि माँ बाप को छोड़कर तू जो तपस्या करता है ये तेरी तपस्या कुछ भी नहीं है, तो माता पिता की वो सेवा करता है। और वहां एक तख्त के ऊपर भगवान अपने ब्राह्मण का रूप धारण करके बैठे, भगवान आठ पैरों में रहते थे अपने रूप को छिपा करके ब्राह्मण के रूप में। मूक चंडाल के पास जाकर उसे नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा कि मैं आपके पास कुछ उपदेश लेने के लिए आया हूँ। उसने उत्तर दिया कि इस वक्त मुझको अवकाश नहीं है, ये माता पिता की सेवा के काम में लगा हुआ हूँ, इनकी सेवा करने के बाद आप जो पूछोगे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। यदि इतनी बार नहीं ठहर सको तो यहाँ एक सुधा नाम की पतिव्रता स्त्री है, उसके पास आप जाइए, वे आपको उपदेश कर सकती। इतना कहने पर उसको क्रोध आ गया कि मैं तुम्हारे घर के ऊपर उपदेश लेने के लिए आया और तुझको बात करने की भी फुर्सत नहीं, ऐसा अहंकार का वचन कहकर के लाल लाल लेकर करके उसके तरफ देखने लगा। तो मूकचंडाल ने हंसकर कहा कि भैया वो बगली चिड़िया नहीं है जो क्रोध करने से भस्म हो जाए, तुम्हारे द्वारा जो चिड़िया भस्म हो गई उसको मैं जानता हूँ, और तुम्हारे लिए जो आकाशवाणी हुई उसको भी मैं जानता हूँ, और तुम्हारी आकाश में ज्योति सूखा करती थी तो वो बंद हो गई क्रोध के काम से, तो भैया क्रोध नहीं करना चाहिए। फिर भगवान वहां ब्राह्मण के रूप में थे, वे उस भगवान ने ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मण बने हुए कि चलो भैया उस पति प्रजा घर में तुम्हारे को बदला, उसको साथ में ले गई। रास्ते में पूछा कि क्या बात, आकाश में जो आकाशवाणी हुई और मेरे द्वारा जो चिड़िया भस्म होगी उसको तो मैं जानता हूँ और तुम्हें कोई था ही नहीं, तो इसको कैसे मालूम हो गया। तो दान रूपी भगवान कहते हैं कि ये माता पिता की सेवा करता है उसके प्रभाव से इनको तीनों काल का ज्ञान है। फिर पतिव्रता का जब घर निकट आया तो उस बतला दिया ये घर है और भगवान वहां से छिप गए, अंतर्धान हो गए। और आगे जाकर के देखो तो वो ब्राह्मण यहाँ बैठा है, वो आगे पहुंच गया, वहां पतिव्रता के घर पर जाकर पुकार लगाई। पतिव्रता स्त्री पति की सेवा में लगी हुई थी, इसलिए कुछ विलंब हो गया। बाद में वह भिक्षा लेकर के आई, तो उसने कहा कि मैं भिक्षा के वास्ते नहीं आया, तो मैं तो तुम्हारे पास उपदेश लेने के लिए आया हूँ। पतिव्रता ने कहा कि महाराज, मेरे पति देव घर के मैं आए हुए हैं और उनकी सेवा के मैं लगी हुई, तो इस वक्त मुझको अवकाश नहीं है, इसलिए आप ठहर। और यदि आपको अवकाश नहीं है तो यहाँ पर एक तुलाधर माँ का वंश है, उसका तुलाधर जाति का वंश, आप उनके पास चले जाइए, वे बहुत अच्छे पुरुष हैं, वे आपको उपदेश कर सकते हैं। इतना कहने के साथ उसने भी क्रोध किया कि मैं तुम्हारे पास उपदेश लेने के लिए तुम्हारे को अवकाश नहीं है। हमारे लाल मित्र के जब देखने लगा तो पतिव्रता ने भी कहा, तुम्हारा जिस प्रकार क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध के कारण तो आपका सब सब नष्ट हो गया, आकाश में आपकी वृत्ति शिक्षा की बंद हो गई। तो ये ऐसा अहंकार नहीं करना चाहिए, वो ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए। यूं कहकर के वो स्त्री अपने घर में से लौट गई। दान रूपधारी भगवान ने कहा, चलो उससे तुला बस का चलो, मैं जानता हूँ। तो वहां देखे रास्ते में पूछा कि आप हमारे पहले पहुंच गए थे, तो सदना मैं जो एक मोक्ष मार्ग की यहाँ जो बात हुई थी वो आप सुनी, तो वो बात आकर इसको खबर पहले तो नहीं दे दी, तो ना मैं क्यों देता था, उसको कैसे मालूम है। बोले ये पतिव्रता पतिव्रत धर्म के प्रभाव से इनको तीनों काल का ज्ञान है। अब वहां बैठी यहाँ पूछी, वहां वो क्रिय विक्रिय कर रहा था, बहुत से आदमी की भीड़ लगी हुई थी, उनको सौदा देता था, रुपया देता था, कोई घी कोई चीनी कोई चावल कोई कुछ कोई कुछ, इस प्रकार से बहुत से व्यापारी वहाँ थे और वो खुला घर सबको जोड़ा। वहां जाकर इस नूतन ब्राह्मण ने कहा कि मैं आपके पास उपदेश लेने के लिए आया हूँ, तो आप मुझको शिक्षा की बात को, तुला जो ने हाथ जोड़ कहा